पेश हैं आज के मुख्य समाचार वैशाली जैन के साथ। फेडरल मंत्रियों को उम्मीद है कि क्रिसमस से पहले शुरू होगी अंतर्राज्य यात्रा। भारत में सामने आए 21 नए ओमिक्रॉन मामले, बूस्टर खुराकों पर बैठक आज। और अगले साल होने वाले फीबा महिला वर्ल्ड कप में नदारद रहेंगी लिज कैम्ब्रिज। और अब खबरें विस्तार से। फेडरल मंत्री डेविड लिटिल प्राउड ने देश भर के प्रीमियरों और मुख्यमंत्रियों से आग्रह किया है कि वे क्रिसमस के पहले देश भर के राज्यों के बीच यात्रा प्रतिबंध हटा दें। यह वक्तव्य तब आता है जब क्वींसलैंड की प्रीमियर अनास्तासिया पलाशे आज अपने राज्य के यात्रा प्रतिबंधों पर निर्णय लेंगी। कृषि मंत्री डेविड लिटिल प्राउड ने कहा है कि राज्य नेताओं को इस विषय पर सोचना चाहिए।
We are going to have to learn to live with this. We just can't put ourselves under the doona forever. We've done a great job and I congratulate the premiers, but it is now time to take that bold step, to trust one another, to take each other's hands and move forward together. And, you know, and I think if New South Wales and Victoria, the most populous states, can do that, I think that sends a very strong message to the rest of the states. Nearly every state's now nearly hit the 80% double jab rate, which under the national plans means that large-scale lockdowns are no longer required.
देश भर में बढ़ रहे कोरोना मामलों के बावजूद विक्टोरिया के प्रीमियर डैनियल एंड्रूज का कहना है कि उनका राज्य जीरो ओमिक्रॉन नीति लागू नहीं करेगा। न्यू साउथ वेल्स और साउथ ऑस्ट्रेलिया इस समय अंतर्राज्य यात्रा की अनुमति दे रहे हैं, हालांकि इन राज्यों में प्रवेश के लिए अब अधिक कोरोना जाँच की आवश्यकता है। इसी बीच न्यू साउथ वेल्स में आज 208 नए कोरोना मामले सामने आए हैं। राज्य में 92.8% पात्र जनता को पूर्ण टीकाकरण प्राप्त हो चुका है। वहीं विक्टोरिया ने आज 1073 नए स्थानीय रूप से अधिग्रहित कोरोना मामले दर्ज किए हैं और राज्य में आज 6 कोरोना संबंधी मृत्यु भी दर्ज की गई हैं। राज्य में 91% से अधिक 12 साल और उससे ज़्यादा उम्र के लोगों को पूर्ण टीका मिल चुका है। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन का कहना है कि सरकार की नई रीसाइक्लिंग नीति के तहत ऑस्ट्रेलियाई उत्पाद पर ज्यादा ध्यान दिया जा सकेगा। प्रधानमंत्री सिडनी में पर्यावरण मंत्री सुजन ली और अपशिष्ट रोकथाम मंत्री ट्रेवर एवंस के साथ मीडिया से बात कर रहे थे। सुश्री ले का कहना है कि इस नई नीति के जरिए क्षेत्रीय ऑस्ट्रेलिया में कई हजार नई नौकरियाँ बनाई जा सकेंगी।
For me as a regional MP, regional jobs are fantastic. 10,000 over the next 10 years, we predict. But also protection of the environment. Because if you don't have plastic going into landfill, you don't have it going into the ocean, you actually having made into something that adds value, you have so many wins. And we don't want everything being dumped in landfill, giving off harmful greenhouse gas emissions. We don't want plastic to end up in our ocean.
प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन का कहना है कि न्यू साउथ वेल्स की पूर्व प्रीमियर ग्लैडिस बेरेजिक्लिन का फेडरल लिबरल पार्टी में स्वागत है। उनका यह वक्तव्य सुश्री बेरेजिक्लिन के खिलाफ चल रही भ्रष्टाचार की जांच के बावजूद आया है। ICAC इस बात की जांच कर रही है कि सुश्री बेरेजिक्लिन ने अपने पूर्व साथी डैरिल मैग्वायर के तथाकथित भ्रष्ट आचरण को छुपाने की कोशिश कर सार्वजनिक विश्वास का हनन किया था या नहीं। कमीशन की रिपोर्ट इस महीने के आखिर में 20 दिसंबर तक आ सकती है। श्री मॉरिसन ने इंडिपेंडेंट कमीशन अगेंस्ट करप्शन यानी ICAC की निंदा करते हुए कहा है कि यह एक जबरदस्ती की जांच है।
We're all pretty used to pylons on our side of politics. I see them all the time. We've got thick skins. We know how to deal with it. And Gladys certainly knows how to. She's a person I've always found to be of great integrity. And if she wants to have a crack at Warringah for the Liberal Party, I suspect the people in Warringah would welcome that.
फेडरल लेबर का कहना है कि वे अगर सरकार में आते हैं तो भारी नुकसान झेल रहे शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए नए यूनिवर्सिटी और टेफ स्थल खोलेंगे। लेबर की शिक्षा प्रवक्ता तानिया प्लिबरसेक का कहना है कि मॉरिसन सरकार नौजवानों के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करना मुश्किल बना रही है।
We see about 83,000 fewer apprentices and trainees today than when the Liberals first came to office. And universities, as Anthony has just said, have had 2 years from hell with billions of dollars cut from their revenue. Scott Morrison's made it harder for young Australians to get a university education by more than doubling the cost of thousands of degrees. And now thousands more students are turned away every year. We've got the highest turnaway rates from universities than we've seen in many years.
पूर्व सैन्याध्यक्ष एडमिरल क्रिस बैरी ने फेडरल लेबर के सत्ता में आने पर एक त्वरित जलवायु खतरे के आंकलन के लिए बनाई जाने वाली कमीशन के वादे का स्वागत किया है। अपनी जलवायु परिवर्तन नीति का अनावरण करने के साथ ही लेबर ने अगले साल होने वाले चुनावों के पहले अपनी पहली बड़ी योजना की घोषणा की थी। इस नीति के तहत लेबर ने 2030 तक 43% कार्बन उत्सर्जन घटाने का लक्ष्य रखा है। एडमिरल बैरी के सुझावों के साथ पार्टी ने एक ऐसी कमीशन का गठन करने का भी वादा किया है जो त्वरित जलवायु खतरे का आकलन करेगी। इस कमीशन का नेतृत्व सुरक्षा सचिव और राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी के महानिदेशक करेंगे। इसी के साथ संसद में सालाना जलवायु रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। ऑस्ट्रेलिया सिक्योरिटी लीडर्स क्लाइमेट ग्रुप के संस्थापक सदस्य सेवानिवृत्त एडमिरल बैरी का कहना है कि वे फेडरल सरकार की ओर से भी ऐसे प्रयास देखना चाहते हैं।
The current government's very pleased to talk about national security when it's about ships and submarines and weapons and AUKUS, but it's not prepared to talk about security in the context of climate change. And we're arguing that climate change consequences presents a very serious national security and human security risk, not just in Australia, but in our region as well. Water insecurities, which lead to food insecurities and what happens when people starve, you're going to have all sorts of civil conflicts erupting.
एंथनी कार्माइंस अब विक्टोरियाई कैबिनेट में एक वरिष्ठ सांसद जो फिलहाल भ्रष्टाचार जांच का केंद्र बने हुए हैं के स्थान पर आएंगे। प्रीमियर डैनियल एंड्रूज ने इस बात की पुष्टि की है कि 48 वर्षीय इवान होसे सांसद श्री कार्माइंस अब डिसेबिलिटी, एजिंग, केयरर्स, चाइल्ड प्रोटेक्शन और फैमिली सर्विसेज के विभाग संभालेंगे। इन विभागों को मध्य अक्टूबर तक ल्यूक डोनलन संभाल रहे थे, लेकिन लेबर पार्टी के लिए नए सदस्य जोड़ने के लिए अनैतिक तरीके अपनाने के आरोपों को स्वीकारने के बाद उन्हें अपने पद से हाथ धोना पड़ा था। वहीं सिडनी के भीतरी पश्चिम में आज बसों की हड़ताल घोषित की गई है। ये हड़ताल वेतन भुगतान में बराबरी के लिए चल रहे विवाद का हिस्सा है। इस औद्योगिक कार्यवाही से राज्य भर में यात्रियों पर प्रभाव पड़ेगा। यूनियंस न्यू साउथ वेल्स के सचिव मार्क मोरे का कहना है कि मौजूदा परिस्थितियां कामगारों पर जरूरत से अधिक भार डाल रही हैं।
Five hours, then a five-hour break, and then on again. So for 5 hours, many of these workers live in Western Sydney, Central Coast, South Coast. They can't afford to live in areas like Strathfield or Burwood where they drive. So they travel a long way, and those shifts are just so unfamily-friendly, it's ridiculous. Also, they're not factoring any toilet stops. So you have to be in traffic for 5.5 hours and you can't stop to go to the toilet.
और अब अंतर्राष्ट्रीय खबरें। उत्तरी इराक के गांव में हुए एक आईएस हमले में कम से कम 4 कुर्दी पेशमर्गा सैनिक और एक नागरिक की मृत्यु हो गई है। पेशमर्गा मंत्रालय ने अपने वक्तव्य में कहा है कि इस हमले में लोगों की मृत्यु हुई है, हालांकि मृतकों की ठीक संख्या की अभी तक कोई पुष्टि नहीं की गई है। अधिकारियों का कहना है कि राज्य सैनिक छापामारी युद्ध तकनीक से रात में हमला कर रहे हैं। पेशमर्गाओं की सहायता के लिए इराकी सैन्य बल को इलाके में भेजा गया है। और अब खबरें भारत से। भारत में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। राजस्थान में रविवार को ओमिक्रॉन के 9 और महाराष्ट्र में 7 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही देश में ओमिक्रॉन के कुल मामले 21 हो गए हैं। वहीं नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन एनटीएजी की आज एक अहम बैठक होगी, जिसमें इस बात पर विचार किया जाएगा कि क्या जिन लोगों का इम्यून सिस्टम कमज़ोर है उन्हें कोरोना वैक्सीन का बूस्टर डोज देने का फैसला दिया जाए या नहीं। इसके अलावा बच्चों के लिए भी टीके को लेकर विचार किया जाएगा। हरियाणा के कुरुक्षेत्र के निकट सोमवार सुबह यानी आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। भारतीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले केंद्र ने बताया कि भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 2.8 मापी गई। भूकंप आज सुबह भारतीय समय अनुसार 1:36 तक आया और सतह से 5 किलोमीटर की गहराई पर नापा गया। केंद्र ने बताया कि इसका केंद्र कुरुक्षेत्र से 72 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम की ओर था। बता दें कि इससे पहले हरियाणा में ही 20 नवंबर को भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। 20 नवंबर को सोनीपत जिले में 2.9 तीव्रता का भूकंप झटका महसूस हुआ था और यह दोपहर 1:09 पर 7 किलोमीटर की गहराई में आया था। और अब डॉलर का हाल। आज यानी शनिवार को ये खबर लिखे जाने तक एक ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की भारतीय रुपयों में कीमत 52.75 और एक अमरीकी डॉलर की तुलना में कीमत 70 सेंट्स रही। और अब खबरें खेल के मैदान से। ऑस्ट्रेलिया की बास्केटबॉल दिग्गज लिज कैम्बेज अगले साल होने वाले फीबा महिला विश्व कप में हिस्सा नहीं लेंगी। सुश्री कैम्बेज ने कहा है कि उन्हें ओपल समूह के साथ ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। टोक्यो ओलंपिक्स के दौरान सुश्री कैम्बेज के नाइजीरियाई खिलाड़ियों के साथ हाथापाई और जबानी लड़ाई की जाँच के बाद पिछले महीने इस बास्केटबॉल खिलाड़ी को बास्केटबॉल ऑस्ट्रेलिया से फटकार पड़ी थी। सुश्री कैम्बेज ने इस घटना के बाद टोक्यो खेलों से अपना नाम वापस लेते हुए ये कहा था कि उन्हें मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं लग रहा है। और अंत में एक नज़र कल यानी मंगलवार को देश के प्रमुख शहरों के मौसम के हाल पर। पर्थ में कल आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। यहां अधिकतम तापमान 37 जबकि न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। एडिलेड में अधिकांश रूप से धूप खिली रहेगी। यहां अधिकतम तापमान 21 जबकि न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। मेलबर्न में कल बरसात की आशंका जताई जा रही है। अधिकतम तापमान 18 जबकि न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। देश की राजधानी कैनबरा में बूंदाबांदी के आसार हैं। यहां अधिकतम तापमान 25 जबकि न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। सिडनी में भी कल हल्की बरसात हो सकती है। अधिकतम तापमान 26 जबकि न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। डार्विन में तूफान के साथ तेज बारिश की आशंका जताई गई है। अधिकतम तापमान 34 जबकि न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। भारत की राजधानी नई दिल्ली में कल धूप छांव का मौसम रह सकता है। दिल्ली का अधिकतम तापमान 23 जबकि न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। समाचार में आज इतना ही। नमस्कार।